ओम शांति। तनाव एक अभिशाप, मनुष्य हमेशा सुखों की आकांक्षा रखता है और उसके लिए वह अनेक कदम उठाता है, परंतु सत्य ज्ञान के अभाव में उसे ये पता ही नहीं चलता कि उसके वे कदम उसे सुखों के मार्ग पर ले चलेंगे या दुखों की आंधियों में धकेल देंगे। सुख हेतु इस सृष्टि के अविनाशी नियमों का उल्लंघन करते हुए मनुष्य सुखों के पीछे दौड़ रहा है, परंतु सुख भी आगे आगे उतनी ही तीव्र गति से दौड़ते चले जा रहे हैं। आस्तिक हो या नास्तिक, सभी को एक मत से यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मन और बुद्धि ही जीवन के संचालक है। बुद्धि उसमें अंतर्निहित विवेक के द्वारा निर्णय लेती है और मन सतत संकल्प रचना में व्यस्त रहता है। मन में सवेरे से रात्रि तक विचार की अनेक धाराएं फूटती है और प्रत्येक धारा मनुष्य के मन पर अपनी अमिट छाप छोड़ती जाती है। कभी कभी तो मनुष्य को यह भी पता नहीं चलता कि वह सारा दिन क्या सोचता रहता है। यदि बुद्धि मन पर नियंत्रण नहीं रखती या बुद्धि मन को यथार्थ दिशा नहीं दे पाती तो मन स्व इच्छा अनुसार इधर उधर भागने लगता है। पहले तो छोटे बच्चे की तरह उसे आनंद आता है, परंतु फिर गिरने पर चोट लगने से खिन्नता का अनुभव करने लगता है। यह भटकता मन स्वयं को किचड़े समान अनेक व्यर्थ संकल्पों विकल्पों का भंडार बना लेता है और फिर उससे उठने लगती है बदबू। फलस्वरूप मनुष्य अपने ही रचे हुए संकल्पों से परेशान रहने लगता है। इस तरह मन की अपनी शक्तियों को नष्ट करता हुआ तनाव का शिकार होने लगता है। आज यही स्थिति अनेक मनुष्यों की है। यूं कहें कि तनाव की अग्नि घर घर में जल रही है, इसमें जीवन की सुख शांति भी राख हो रही है। सुंदर जीवन पाकर यदि किसी का मन तनाव की लपटों में उलझता रहे तो यह जीवन के लिए बड़ा अभिशाप है। जीवन पाकर जिस मनुष्य ने जीवन को सुखी व संतुष्ट बनाना नहीं सीखा, उसका विवेक भला किस काम का। चिकित्सा विज्ञान अब स्वीकार करने लगा है कि अधिकतर बीमारियों का कारण व उनमें वृद्धि मानसिक तनाव के कारण ही है। मन की प्रसन्नता से रोग मुक्त या रोग प्रभाव मुक्त जीवन जिया जा सकता है। आज मन की विकृतियां या वातावरण प्रदूषण का को ही भयंकर रोगों का जिम्मेदार माना जाएगा। जब मन तनावग्रस्त है तब पाचन शक्ति क्षीण होने लगती है, ग्रंथियां ठीक से काम नहीं करती, मस्तिष्क पर निरंतर दबाव बना रहता है और मनुष्य इस प्रकार आमंत्रित कर लेता है अनेकानेक व्याधियों को। इतना ही नहीं, ये मन का तनाव ही सामाजिक, पारिवारिक या व्यक्तिगत समस्याओं का भी मूल बन जाता है। प्रत्येक घर में कम से कम एक प्राणी तो ऐसा होता ही है जो अनेकों के मन में तनाव पैदा करता है। वो परिवार तो धन्य माना जाएगा जिसमें सभी शांत व शीतल स्वभाव वाले हो, नहीं तो एक मनुष्य के मन में उत्पन्न अशांति अपना प्रभाव पूरे समाज पर अवश्य डालती है। यह तो वर्तमान में चहुओर प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। आओ हम सभी मिलकर सरलतापूर्वक जीवन जीने का परम आनंद लें। यदि धन धान्य व परिवार पाकर भी हम तनावग्रस्त हैं तो हमें गंभीरता से इसके कारणों को जानकर उनका उन्मूलन करना चाहिए। यदि अच्छा पद या धंधा पाकर भी हमें चैन की नींद नहीं मिलती तो हमें चेक करना चाहिए कि हमारे दृष्टिकोण या हमारे व्यवहार में कहीं विकृतियां तो नहीं है। जीवन एक ईश्वरीय वरदान है। हम इस तरह जिए कि हमारा जीवन हमें भी प्रिय लगे व दूसरों को भी। जीवन एक खेल है। हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि इस विशाल विश्व के नाटक मंच पर हम सभी मनुष्य आत्माएं एक्टर्स हैं। हमारा जीवन हमारे लिए एक खेल है। हार जीत सुख दुख व लाभ हानि के इस खेल में हमें निरंतर प्रसन्न रहना है। याद करें हम सभी का बचपन किस तरह खेल में निश्चिंतता पूर्वक बीता, परंतु धीरे धीरे इस खेल में खेलना भूल गए। हमारे में मेरेपन का एहसास बढ़ा, हमारी इच्छाएं बढ़ी, हमने संसार में बहुत कुछ वो भी देखना प्रारंभ कर दिया जिससे हमारा कुछ भी संबंध नहीं, और जीवन के खेल का मजा किरकिरा होने लगा। जीवन के इस खेल में हमें निरंतर कर्म रूपी खेल से खेलना है। हमें कर्म करना है, हमें मनुष्यों से व्यवहार करना है, हमें सदा अपने बोल के द्वारा दूसरों से वार्तालाप करना है, वह हमें अपने परिवारों में घनिष्ठता पूर्वक स्नेह संबंध में रहना है। ये सभी बातें हमारे मन पर अमिट छाप छोड़ती है। किसका कैसे लोगों से संबंध हुआ, किसने किन किन पुस्तकों का अध्ययन किया, किसको कैसी बुद्धि मिली, इस पर निर्भर करता है हरेक के जीवन का भावी नक्शा। किसी ने जीवन रूपी खेल में कांटे बोलिए, किसी ने फूल उगाए, जिसने जैसा बीज बोया वैसा ही उसे फल चखना पड़ा। परंतु आश्चर्य है कि मनुष्य बीज उस बचपन व युवा काल में बोता है जब उसे इसके परिणाम का स्पष्ट बोध नहीं होता, जब वह दूसरों पर आश्रित होता है, और फल उसे तब चखना पड़ता है जब उसकी आंखें खुलती है, अर्थात जब वह समझदार बनता है। तो अपने कर्मों को खेल की तरह करना चाहिए, जीवन में आने वाली परिस्थितियों को भी खेल की तरह हंसते हंसते पार कर लो, कहीं पर रुको नहीं। यदि तुम रुक गए तो इस खेल का आनंद नहीं आएगा। यदि तुम इस संकल्प से कार्य करोगे कि यह कर्म खेल है तो तुम्हें कर्म थकाएंगे नहीं और कर्म में खेल खेलने जैसा आनंद प्राप्त होगा। तो जरा जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलकर तो देखो। जिम्मेवारियों का बोझ, बीते दिनों की चिंताएं या भविष्य की इच्छाएं यदि तुम्हें भारी करती हो तो जरा इन सब को खेल मान लो। खेल में कभी हार कभी जीत अवश्य भावी है। यह संभव नहीं है कि किसी के गले में सदा ही विजय का हार डाला जाता रहेगा। हार में भी निराश होने की जरूरत नहीं, हार भी खेल का एक मूल्य पक्ष है, इसीलिए उसका भी आनंद लो, इससे भी कुछ सीखकर आगे बढ़ जाओ। ये याद रखो आज हार हुई है, कल जीत होंगी, हार के बाद होने वाली जीत का आनंद लो। तो जीवन के उतार चढ़ाव तुम्हारी खुशी को नष्ट न करें। तुम चतुर खिलाड़ी की तरह जीवन रूपी खेल का आनंद लेते चलो। हार में भी तुम्हारे प्रसन्न चेहरे को देखकर दूसरे भी जीवन को खेल बनाना सीखेंगे। इस खेल को संपूर्ण उमंग उत्साह के साथ खेलते रहो तो तुम्हारे जीवन की यात्रा तनाव मुक्त, हंसते बहलते पूर्ण होंगी और तुम्हें जीवन का संपूर्ण सुख प्राप्त होगा। क्रोधी स्वभाव करता है तनाव का आवाहन। बात बात में क्रोध दिखाना, दिखावे के लिए दूसरों पर रोब झाड़ना या किसी भी कारण से स्वभाव में चिड़चिड़ेपन का प्रवेश तनाव के लिए द्वार खोल देता है। कई परिवारों में दिन का प्रारंभ ही क्रोध से होता है। आंख खुलते ही चाय में देरी हो गई तो जनाब उबल पड़े, आंख मलते मलते किसी की कोई भूल देख ली तो क्रोध का बोध हुआ सवार। इस प्रकार विभिन्न कारणों से मनुष्य अपने मन मंदिर में क्रोध रूपी शैतान को आमंत्रित करके बैठा लेता है और फिर चाहता है कि उसका पारिवारिक जीवन शांति से बीते। घर में शैतान और शांति की इच्छा, ये संभव नहीं। क्रोध मनुष्य के मन व बुद्धि की शक्तियों को छीन करके उसे तनाव के कूप में धकेल देता है। जहां मन बुद्धि निर्बल है, जहां उनमें समस्याओं को सहने की शक्ति नहीं है, वहां बात बात में तनाव होना स्वाभाविक है। इस क्रोध की अग्नि को बुझाए बिना तनाव मुक्त जीवन का आनंद लेना संभव नहीं। क्रोध को समाप्त करने के लिए जरा धैर्यता रूपी शस्त्र का प्रयोग कीजिए। स्वयं को चेक करें, कहीं आपके मन में तुरंत प्रतिक्रिया करने की बुरी आदत तो नहीं है। किसी ने कुछ किया या किसी ने कुछ कहा और तुरंत आपके मन में तीखी प्रतिक्रिया तो नहीं होती? यदि हां तो यह बड़ी घातक है। यह स्वभाव आपको चैन नहीं लेने देगा। आप जरा ठहरने की आदत डालो, विचार करो, इस मनुष्य से मैं एक घंटे के बाद बदला लूंगा। किसी ने कुछ गलती की हो तो सोचो, इसे 15 मिनट के बाद समझाऊंगा। किसी ने आपको बुरा बोला हो तो सोचो, 10 मिनट बाद इससे निपटूंगा। इस तरह जरा धैर्यता के गुणों को बढ़ाओ। इस अंतराल में अपने मन को सुविचारों से भर दो तो यह धैर्यता आपके जीवन के लिए वरदान बन जाएंगी। आप अपने जीवन में लक्ष्य बना लो कि अपने क्रोध को कम करते करते उसे समाप्त करना है। यह श्रेष्ठ इच्छा आपको बहुत शक्ति देंगी। और याद रहे, जो व्यक्ति मन के क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ है वह बहुत शक्तिशाली है और वह शांत भाव से सभी बातों को हल करके तनाव मुक्त जीवन का सुख ले सकता है। हमें अपने क्रोध के लिए किसी अन्य को जिम्मेदार ठहराने की आवश्यकता नहीं। अपने क्रोध के लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। दूसरे तो गलती करेंगे ही, परंतु उनकी गलती पर हम क्रोध करने की बड़ी गलती ना करें। हमारा क्रोध हमारे उन्नति के मार्ग में सबसे ज्यादा बाधक है। क्रोधी व्यक्ति सभी का स्नेह और सम्मान खो देता है। आपका क्रोध तनाव का वातावरण बनाकर बच्चों की या आपके साथ कार्यकर्ताओं की कार्य क्षमता को कम करेगा, बच्चों के मन पर दबाव बना रहेगा और फलत उनका विकास रुक जाएगा। दफ्तर में आपके साथी तनाव के माहौल में खुशी पूर्वक कार्य नहीं कर सकेंगे और वे ज्यादा गलतियां करेंगे। इसीलिए इस क्रोध को जीवन का महावैरी जानकर नष्ट करने की आंतरिक इच्छा को जागृत करो। याद रखो, क्रोध मनुष्य का मूल स्वभाव नहीं है। मनुष्य आत्मा की मूल प्रकृति शांत है। सदा चिंतन करो कि अपनी शांति से क्रोध को समाप्त करना है। क्रोध को इतने तक समाप्त करना है कि मन में भी इसका उद्वेग न उठे। तब हम इस तनाव की महामारी से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों में सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। व्यर्थ चिंतन पैदा करता है तनाव। मनुष्य निरंतर अपने मन की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, अथवा यूं कहें कि प्रयोग से ज्यादा वह इस अनमोल निधि का दुरुपयोग करता है। किसी भी निधि को नष्ट करने से उसका अभाव हो जाता है। मन की शक्ति नष्ट होने से मन निर्बल हो गया है। कोई भी शक्तिहीन वस्तु स्थिर नहीं होती। इसी तरह मन भी अस्थिर व चंचल होकर इधर उधर भटकने लगता है। मन को कमजोर किया आत्मा के महाशत्रु मनोविकारों ने इन मनोविकारों को मनुष्य ने जीवन का आनंद समझा, वह अपना मित्र समझा, परंतु इन लुटेरों ने जीवन का आनंद लूट लिया। सच कहें तो इन विषय विकारों ने ही मनुष्यों को भटकाया है। भटकते मनुष्य को चैन कहां? भटकता मन उदासी, उलझन, निरसता व चिड़चिड़ेपन का शिकार होता गया और तनाव इन सभी की देन है। जब मनुष्य की इस तरह की स्थिति हो जाती है तो वह व्यर्थ विचारों का शिकार हो जाता है। तब मनुष्य वह सोचता है जो उसे नहीं सोचना चाहिए और वह वैसा नहीं चिंतन करता जैसा उसे करना चाहिए। व्यर्थ चिंतन से मन की गति अति तीव्र हो जाती है और उसको ब्रेक लगाना टेढ़ी खीर हो जाता है। आप अपने मन का निरीक्षण करें। आप क्या सोचते हैं? आपकी चिंतन की धारा किस दिशा में जाती है? आंख खुलते ही आप क्या सोचते हैं? सोते समय आपका विचार प्रवाह क्या रहता है? जब आपको कोई कुछ गलत बोल देता है तब आपके मन की प्रतिक्रिया क्या होती है? जब आप व्याधिग्रस्त हैं तब आपका मन आपको कहां की सैर करा रहा है? जब आप समस्याओं के घेरे में हैं तो आप क्या सोचते हैं? और जब सब कुछ आपकी इच्छा के विरुद्ध होने लगता है तब आपका चिंतन किस प्रकार का होता है? यदि आपको गलत सोचने की आदत पड़ गई तो आपका मन कभी भी तनाव मुक्त नहीं हो सकेगा। अनेक लोग व्यर्थ सोच रहे हैं, अनेक उल्टा सोच रहे हैं। आपकी क्या गति है? इस आदत को बदलो। जरा अच्छा सोचना प्रारंभ करो। आंख खुलते ही अच्छे विचारों का निर्माण करो। यदि आप धर्म प्रेमी हो तो उस संबंध में विचार करो। यदि आप कोई साधना करते हैं तो मन को रोकने के अतिरिक्त उसे आनंदकारी विचार भी दो। परंतु ऐसे विचार आखिरकार आएंगे कहां से? इसके लिए आपको अच्छे अच्छे साहित्यों का अध्ययन करना होगा। उठते ही आप सोचें, मैं भगवान का बच्चा हूं, वह मेरा परम पिता मेरा जिम्मेवार है, उस पर मेरी जिम्मेवारी है, वह अवश्य ही मुझे मदद करेंगे। मेरा परम पिता तो सर्व समर्थ है, मेरे ऊपर उसकी छत्र छाया है, वह मुझ पर उसकी अगाध कृपा बरस रही है, सुखद व शक्तिशाली विचारों का निर्माण करना सीखें। श्रेष्ठ विचार हमारे जीवन की अमूल्य निधि है। इस जीवन में मन में जितने अच्छे विचार उत्पन्न कर सकते हैं वे उतने ही सुखी बन जाते हैं। व्यर्थ विचारों में लगे रहने का अर्थ है यूं ही मन में तनाव का आवाहन करना। सब कुछ वैसा ही नहीं होता जैसे कि हम कल्पना करते रहते हैं, तो मन में संकल्प को परिवर्तन करने का अभ्यास करें। जो संकल्प मन में तनाव पैदा करते हैं उन्हें मन के द्वार तक आने ही न दें, उनका रूप परिवर्तन करते चलें। आप स्वयं में तनावग्रस्त रहने की आदत न डालें। यदि एक बार यह आदत पड़ गई तो निकलनी कठिन होगी। तनाव आए तो शीघ्रतः विचारों को परिवर्तन करके स्वयं को आनंदित कर लें। इस तरह मन पर कुछ समय ध्यान देने से आप इस तनाव के रोग से मुक्त हो सकेंगे। स्वयं का दमन न करो। संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जो परिवारों में या दफ्तरों में दूसरों को दबाते रहते हैं, सताते हैं, और इस प्रकार मनुष्य दमन महसूस करता है। उसे बोलने नहीं दिया जाता, शक्ति से उसकी भावनाओं को दबाकर उसके मन में तनाव डाल दिया जाता है। यदि आपके साथ भी कहीं ऐसा हो रहा हो, घर में कोई सतत आपका दमन करता हो, सदा आपको डांटता ही रहता हो, बुरा बोलता हो, या दफ्तर में कोई आपको सताता हो, आप पर कार्य का अनावश्यक बोझ डाल दिया करता हो, या सदा ही आपके कार्य में नुक्स निकालता हो, या आपकी शिकायतें करता रहता हो, तो आप क्या करें? यद्यपि सहन करना एक महान गुण है, जो सह जाए वो आगे निकल जाए, तो भी यदि सह लेना खुशी छीन रहा हो, यदि सह लेना मन को भारी कर रहा हो, यदि सहना सहन ना हो रहा हो, तो मन में तनाव अवश्य पैदा होगा। जो लोग सहन करते हैं, सहते हैं, उन्हें दूसरे लोग दबाते हैं, वह समय का बुरा प्रभाव है। यदि हम अपनी ईश्वरीय कुमारी में रहें, जिसे स्वमान कहा जाता है, तो दूसरे हमारी सहनशीलता का दुरुपयोग नहीं करेंगे। इसीलिए यदि आपको सहना ही है तो हंसते हंसते सह लो। दूसरों के कुवचनों पर गंभीरता से चिंतन ही न करो। कहने वाला कहकर चला गया, आप भी उसके प्रभाव को उसके साथ ही जाने दो। यद्यपि गंभीरता भी श्रेष्ठ गुण है, परंतु यदि सब कुछ अंदर समाकर आप पचा न पाए तो बदहजमी पैदा होगी और आप तनावग्रस्त रहने लगेंगे। इसीलिए दूसरों की बातों को समाओ, समाओ उसी सीमा तक जहां तक आपकी खुशी कम न हो। यदि दूसरों की बातें आप में घुटन पैदा करती है तो उल्टी कर दो, अर्थात अच्छे शब्दों में उत्तर दे दो। आप जो कहना चाहते हो कह डालो। हां, कहते समय तब भी आप शिष्टाचार न भूलें। जब दूसरा अशिष्टता का व्यवहार कर रहा हो, इसका अर्थ क्रोध नहीं, क्योंकि क्रोध तो तनाव बढ़ाएगा ही। तात्पर्य यह है कि आप घुटन महसूस न करें। बुद्धि व जीवन के विकास के लिए खुले आकाश में श्वास लेना परम आवश्यक है। यदि बोलकर आपको सुख चैन अनुभव होता है तो वही करें, ताकि दूसरे की दमन नीति कुछ धीमी पड़ सके। दूसरे के दमन को सहन करना भी कायरता है, इससे दूसरों की आसुरी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। आप स्वयं की खुशी को बचाते हुए दमन के विरुद्ध खड़े हो जाएं, आपकी विजय अवश्य होगी, वह दूसरे दमनकारियों को सीख मिल जाएंगी। अपने मन को निर्बल निराश होने से बचाएं। यदि बोलने वाला बोलते ही जा रहा है, यदि वह अपनी आदत नहीं छोड़ता तो हम अपनी खुशी क्यों छोड़ें? जब वह अपना कार्य बखूबी से कर रहा है तो मैं भी श्रेष्ठ व्यवहार करना क्यों छोड़ूं? जब वह बुरा व्यवहार करे तो आप सोचो कि मुझे इससे अप्रभावित रहना है, साथ ही साथ अपने मन से भय निकाल दो और अधिकारीपन की भावना से रहो, क्योंकि आप गुलाम तो नहीं हो जो दूसरा व्यक्ति आपसे यूं ही दुर्व्यवहार करता रहे। अपने भाग्य पर विश्वास रखते हुए, अपनी कर्मठता पर विश्वास रखते हुए भय से मुक्त रहें। जो होगा उससे निपट लेंगे, अभी से भयभीत क्यों? ऐसे ऐसे विचारों से अपने मन को दृढ़ करें। याद रहे, दमनकारी व्यक्ति स्वयं भी स्वयं से अति परेशान रहता है और एक दिन आता है कि वह नष्ट हो ही जाता है। आप अपने मन की खुशी कायम रखो, अपने कार्य ईमानदारी से पूर्ण करते रहो और तनाव मुक्त जीवन का परम आनंद अति इंद्रिय सुख लो। बुद्धिमान और तनाव। आज संसार में अनेक बुद्धिमान लोग अधिक परेशान पाए जाते हैं, जिन्हें बुद्धि की सुंदर गिफ्ट प्राप्त है, वे भी यदि तनावग्रस्त होंगे तो सामान्य जन का क्या हाल होगा? क्यों हैं ये बुद्धिमान लोग परेशान? क्योंकि उन्हें बुद्धि का अहंकार है और क्योंकि वे अपनी बुद्धि का सदुपयोग न करके दुरुपयोग करते हैं। अहंकारवश उन्हें ऐसा लगता है कि दूसरे लोग उन्हें सम्मान नहीं देते, दूसरे लोग उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते। फलस्वरूप वे स्वयं ही सोचकर परेशान होने लगते हैं, रहने लगते हैं। बुद्धिमान लोग ही ज्यादा सोचते हैं, अर्थात ज्यादा चिंता करते हैं, क्योंकि वे अपने को ज्यादा समझदार समझते हैं। जिम्मेदारियों में वे हल्के रहना ही नहीं जानते, हर परिस्थिति का वे ज्यादा विश्लेषण करते हैं। वह स्वयं को ज्यादा बुद्धिमान मानने के कारण दूसरों की राय उनके गले नहीं उतरती, वे दूसरों का अपमान कर देते हैं, इससे वे सबके सहयोग से वंचित रह जाते हैं। हमने एक प्रोफेसर को देखा, उसका बहुत नाम था परंतु घर में वह ज्यादा ही परेशान था। बात बात में कहता था, तुम क्या जानो, मैं बहुत अनुभवी हूं, तुम्हें क्या पता, मैं सब जानता हूं। दूसरे यदि कुछ राय देते थे तो वह कहता था, तुम चुप रहो, तुम अभी बच्चे हो। फलस्वरूप घर में भी काफी तनाव का माहौल रहता था, वह उसके चेहरे पर भी सदा ही तनाव की सिकुड़न देखी जाती थी। परेशान होकर कर वह दूसरों को दोष दिया करता था, कैसा है ये जमाना, ये कैसा जमाना आ गया है, कोई किसी को सहयोग ही नहीं देता, कोई हमारी बात ही नहीं सुनता। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों पर दोष रखकर स्वयं को सुरक्षित करना चाहता है, परंतु इस तरह कभी सुरक्षा नहीं होती। दूसरों को दोष देकर कर स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने वाले ज्यादा ही परेशान रहते हैं। जरा समझदार बनो, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करो, उल्टा सोचने की आदत को तिलांजलि दो, वो अपनी बुद्धि का सर्वांगीण विकास करो। एक विषय की बुद्धिमत्ता पर्याप्त नहीं है, जीवन सुखपूर्वक जीने के लिए बुद्धि की विशालता, हृदय की उदारता व मन की स्थिति का परम महत्व है। तो यदि आप सचमुच बुद्धिमान है तो सोचो, समस्याओं का निदान आप कैसे करते हैं? यदि छोटी छोटी सी बात आने पर ही आप परेशान हो जाते हैं तो आप यथार्थ में बुद्धिमान नहीं। यदि आप बुद्धिमान है तो आप में धैर्यता व क्षमा भाव होना चाहिए। अपनी बुद्धि का प्रयोग अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए करो, अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरपूर करो। ऐसा निर्णय लो जो समस्याएं सहज समाप्त हो जाए। दूसरों से ऐसा व्यवहार करो जो वे तुम्हें दिल से सम्मान दे। ऐसे कर्म करो जो तुम्हारे कर्म तुम्हें वो तुम्हारे परिवार को तनाव मुक्त कर दे। बुद्धिमान व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए ताकि उसके बोल दूसरों को कष्ट न दे। बुद्धिमान व्यक्ति का यह परम कर्तव्य है कि वह अपने स्थान का वातावरण सरल बनाए, खुशहाल बनाए, तभी उसका भी जीवन तनाव मुक्त रहेगा और उसके साथ रहने वाले भी इस बीमारी से मुक्त रह पाएंगे। संबंधों में कड़वाहट तनाव लाता है। संबंधों का सुख उनमें मधुरता पर आधारित है। संबंधों के निर्माण के पीछे स्नेह व सहयोग की भावना निहित है। संबंधों में मनुष्य को सहारे का अनुभव होता है, वहां अपनापन होता है। ये पारस्परिक संबंध ही है जिनके सूत्र में हमारे परिवार बंधे हुए रहते हैं, इसीलिए समस्याएं कम आती है। मनुष्य स्वयं को अकेला महसूस नहीं करता, परंतु यदि किसी संबंध में विष घुल चुका हो, यदि वह मृदुता के बदले कटुता ने स्थान ले लिया हो, तो रात दिन के तनाव का जन्म होता है। अपनों से ही मनुष्यों की कामनाएं भी होती है, वह अपनों पर ही अधिकार भी। अपनों पर ही यदि अधिकार ना हो तो उसे अपना ही कौन कहेगा। आज समय बदल चुका है। चूहू और पारस्परिक नातों में कड़वाहट कोई आश्चर्य की बात नहीं रह गई। मनुष्यों के लिए सबसे बड़ी असहनीय मार है अपने समीपस्थ संबंधों में मन मुटाव की। वह संसार की सभी समस्याओं से साहसपूर्वक लड़ सकता है, परंतु जब आग अपने घर में ही लगी हुई हो और लगाई भी अपनों ने ही हो, तो मनुष्य अवश्य ही तनाव से पीड़ित रहने लगेगा, क्योंकि अपनों को न तो वह छोड़ सकता है, वह उनसे नफरत ही नहीं कर सकता, और सच तो यह है कि वह उन पर अपने अधिकारों को, रस्सियों को भी ढीला नहीं कर सकता। हमें देखना यह होगा कि रिश्तों की इस खींचतान में मैं कहां तक जिम्मेदार हूं। प्रायः मनुष्य दूसरे के स्वभाव या व्यवहार को दोष देकर कर इसका हल ढूंढना चाहता है, जो कि सत्य नहीं है। हो सकता है कि किसी का कोई संस्कार या व्यवहार सचमुच ही इतना तनाव का कारण हो, परंतु सोचना यह है कि कहीं हम आग में तेल की बूंद डालकर इस अशांति की अग्नि की जो ज्वाला है उसको प्रज्वलित तो नहीं कर देते। हमें ये भी देख लेना चाहिए कि दूसरों से हमारी कामनाएं तो कहीं इस तनाव के कारण का जिम्मेवार नहीं। हम विचार करें, क्या अपने स्नेह के बदले जो कामनाएं हम दूसरों से रखते हैं वह उन्हें पूर्ण कर सकते हैं। सहयोग देकर कर जैसा सहयोग बदले में हम उनसे पाना चाहते हैं, क्या वे वैसा सहयोग दे सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य की अपनी सीमित क्षमताएं हैं, स्वतंत्रता है। उन सबसे आगे निकलकर क्या वे हमारी सभी कामनाओं पर ठीक उत्तर दे सकते हैं। हम थोड़ा गहन होकर कर गहनता से सोचें, क्या हम दूसरों की सभी कामनाओं की तृप्ति कर सकते हैं, या हमें अपनी कामनाओं के ज्वार को कम करना पड़ेगा। यह सत्य है कि कामनाओं की न्यूनता ही खुशी का मार्ग प्रशस्त करेंगी व कामनाओं की अधिकता तनाव को निमंत्रण देंगी। हम दूसरों पर सदा ही अधिकार न रखें। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है। हम अपने मन में उसके लिए स्नेह जागृत करें। जरा शांति से बैठकर हम उनके गुणों का भी अवलोकन करें। अवगुण चित्त पर रखकर हमने उनके प्रति जो घृणा भाव पैदा कर लिया है, यही उनके दुर्व्यवहार का जिम्मेवार और हमारे तनाव का कारण है। तो नातों को मधुर बनाओ, स्वयं मधुर बनो, नम्र बनो, अपने परिवार में एक दूसरे के लिए आदर का माहौल पैदा करो, अहंकार का नहीं। एक दूसरे से हल्के हो जाओ, दूसरों की बातों को समझने का प्रयास करो। तनाव आपके घर की दीवार को भी छूने की कोशिश नहीं करेगा। उतावलेपन से तनाव की उत्पत्ति। कई लोग कोई भी काम धैर्यता पूर्वक नहीं करते, न करने देते हैं। उनकी जल्दबाजी उनके व दूसरों के मन में तनाव पैदा करती है। यदि उन्हें यात्रा करनी है तो समय पर ट्रेन पकड़ने के लिए और उनके पूर्व की तैयारी करने के लिए वे इतनी जल्दबाजी करते हैं कि सभी को परेशान करके रख देते हैं। वे कभी किसी पर क्रोधित होते हैं, कभी किसी पर, कभी कहते हैं जल्दी करो देर हो जाएंगी, लगता है आज तुम मेरी ट्रेन ही छुड़वा दोगे, और इस प्रकार तनाव पैदा होने लगता है। कार्यों में गलतियां भी ज्यादा होती है, समय भी ज्यादा लगता है। हमें यह जान लेना चाहिए कि तनाव उत्पन्न हो जाने से मन की बहुत सारी शक्तियां नष्ट होने लगती है तथा कार्यों में परेशानियां ज्यादा आती है। शांत और स्थिर मन से कार्य करने से कार्यों में पूर्णतया होती है, वह समय से पूर्व कार्य पूर्ण हो जाते हैं। आप यह कभी न भूलें कि यदि आप दूसरों के मन में तनाव पैदा करते हैं तो आप तनाव से मुक्त कभी नहीं हो सकेंगे। जल्दबाजी का संस्कार अर्थात उतावलेपन की आदत बुरी है। उतावलेपन से किए गए कार्यों के बाद अवश्य ही मनुष्य के मन को पछतावा होता है, उसे पछताना पड़ता है। तो न सोचने में, न निर्णय करने में जल्दबाजी हो और न बोलने में उतावलापन हो। कार्य भी धैर्यता पूर्वक परंतु चुस्ती के साथ किया जाए। सुस्ती या अधूरा कार्य छोड़ने की आदत तनाव को जन्म देंगी। आप सदा ही अपने मन में यह दृढ़ता लाएं कि हम समय से पूर्व अपने सभी कार्य पूर्ण कर लेंगे। चाहे आपको थोड़े ही समय में अनेक काम क्यों न करने हो, चाहे आपके दरवाजे पर मिलने वालों की भीड़ हो, तो भी आप तनावग्रस्त न हो, धैर्यता पूर्वक शांत मन से खेल की तरह सारे कार्य कर लें। यह मात्र सिद्धांत नहीं, परंतु यदि आप अपने कार्यों को ठीक तरह से आयोजित करेंगे तो सारे कार्य भी आपको खेल तुल्य ही प्रतीत होंगे। कई अधिकारी जब ये देखते हैं कि आज उनसे काम कराने अनेक लोग आ गए हैं तो उनकी भौंहें तन जाती है, वे उबल पड़ते हैं और बुरा व्यवहार करने लगते हैं। परंतु आप अपने मन में धारणा बना लें कि मैं सभी के कार्य कर लूंगा। यह विश्वास ही आपको सफलता दिलाएगा। इससे मन शांत रहेगा और बुद्धि में संतुलन बना रहेगा। आपके घर में यदि अचानक मेहमान आ पधारे और आपको बहुत सारा कार्य करना हो तो भी आप तनावग्रस्त न हो, प्रेम से उन सब का स्वागत करें। हो सके तो उनमें से ही किसी को अपना सहयोगी बना लें और प्रसन्न मन से उनके लिए चाय नाश्ते तैयार करें। परंतु यदि आप अपने विचारों को नकारात्मक कर दिया, यदि आप सोचने लगे कि मुझे तो अमुक अमुक कार्य करना था, ऐसे समय में मेहमान आ टपकेंगे तो परेशानी होगी। परंतु आवश्यकता अनुसार आप अपने कार्यक्रम बदल लें और जो कार्य अचानक सामने आ गया है पहले उसे ही पूर्ण करें। इस प्रकार प्रतिदिन मनुष्य के सामने अचानक ऐसे कई प्रसंग आ जाते हैं, तो अभ्यास कर लें कि हाथ पांव भले ही तीव्रता से चले परंतु मन तीव्रता से न भागे, मन अपने कंट्रोल में हो। यद्यपि इसके लिए अच्छे अभ्यास की आवश्यकता है तो भी यह स्थिति प्राप्त कर लेने से कर्म खेल लगने लगेंगे। यदि आपको अचानक कुछ निर्णय लेने पड़े, चाहे वो निर्णय दूसरों को कुछ बोलने का ही क्यों न हो, तो भी थोड़ा ठहरो, दूसरों को बोलने दो। यह अभ्यास आपको तनाव मुक्त होने में मदद करेगा। मन को ऐसी स्थिरता प्रदान करने के लिए रोज आंख खुलते ही ये अभ्यास किया जाए कि मैं इस देह से भिन्न एक आत्मा हूं, मैं चैतन्य शक्ति हूं, मैं इस देह से कार्य कराने वाली हूं और मैं शांत स्वरूप हूं। ये आत्मा चिंतन तनाव मुक्त होने में मुख्य भूमिका निभाएगा। जिम्मेवारियों में हल्कापन हो, प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी प्रकार की जिम्मेदारी का वहन करना ही होता है। कोई अपने परिवार की जिम्मेदारी है, कोई अन्य किसी को किसी कार्य की जिम्मेदारी है, किसी को नगर की जिम्मेदारी है, तो किसी को संपूर्ण राष्ट्र की जिम्मेदारी लेना, जिम्मेदारी संभालना मनुष्य में अनेक गुणों की उत्पत्ति करता है। जो व्यक्ति सफलतापूर्वक व सरलतापूर्वक जिम्मेदारी निभाता है वह दिनों दिन प्रगति के उन्नत पथ पर अग्रसर रहता है। कई लोग जिम्मेदारियों से घबराते हैं, जिम्मेदारी उन्हें तनावग्रस्त कर देती है, उनका मन सतत जिम्मेदारियों से दबा दबा सा रहता है, निरंतर उनके मन में जिम्मेदारी एक भूत की तरह सवार रहती है। कोई कोई तो नींद का भी सुख नहीं ले पाते, वे चिंतित रहते हैं कि पता नहीं अमुक व्यक्ति वह कार्य करेगा या नहीं, अमुक कार्य पूर्ण होगा या नहीं, वे अति तनावग्रस्त रहते हैं। यह देखकर कि फलाना व्यक्ति उनकी बात ही नहीं सुनता या मेरा जो बच्चा है वो मेरी बहुत अवज्ञा करता है, निस्संदेह जिम्मेदारियां कईयों की नींद हराम कर देती है। इसके बाद भी हमें जिम्मेदारी संभालना ही पड़ता है क्योंकि यही मार्ग है प्रगति का। परंतु हम क्या करें जो जिम्मेदारी भी पूर्ण करें वह तनाव भी न रहे। हम अपने जीवन के कुछ ठोस सिद्धांत बना लें, या यूं कहें कि कुछ सिद्धांतों का अपने जीवन में समावेश कर लें, अपने दृष्टिकोण बदल लें। उदाहरण के लिए, कोई भी कार्य करने में भूल होना संभव है, इसीलिए हम छोटी मोटी भूलों को गंभीरता से न लें। जब कुछ बड़ा कार्य चल रहा हो तो उसमें 5 या 7% नुकसान होना स्वाभाविक है, इसीलिए होने वाले उस छोटे मोटे नुकसान से परेशान न हो। यदि आपके साथ 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं, आप इस तरह एक मापदंड अपनी बुद्धि में तैयार रखें, 10 में से 2 व्यक्ति अति योग्य वो बुद्धिमान होंगे, 6 व्यक्ति सामान्य होंगे, 2 व्यक्ति कम बुद्धि वाले वो कम योग्यता वाले भी होंगे। इन 2 व्यक्तियों से आप ज्यादा चिंतित न हो। यही बात एक परिवार पर भी लागू होती है। प्रायः हर परिवार में एक न एक व्यक्ति इसी श्रेणी का होता है, हमें उसे स्वीकार करके समाना होगा। आपके इस संगठन में कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपकी अवज्ञा करे, इसे भी आपको बुद्धिमानी से ठीक करना होगा। आप नियम बना लें कि हर बात में आप सरल चित्त रहेंगे, इससे परेशान होने की आदत समाप्त हो जाएंगी। परेशानियां व समस्याएं तो हर जगह है ही, परंतु हमें परेशान नहीं होना है। हमें हमेशा ये ही नहीं सोचते रहना है कि क्या करें, लोग कैसे काम करें, लोग काम ही नहीं करते। देखिए, जहां तहां यही शिकायतें हैं, फिर भी सारा संसार के सभी कार्य हो रहे हैं। हाँ, यदि हमारे साथी ठीक काम नहीं करते तो हमें उसका उचित उपाय अवश्य करना चाहिए। सरल चित्त होने से आप सदा मुस्कुराते रहेंगे, हर बात को सरल करने के संस्कार बना लें। और यह अटल नियम याद रखें, जो जितना सरल चित्त है उसका कार्य उतना ही सरलता से पूर्ण होता, जो जितना सरल है वह जीवन उतना सफल है। क्योंकि सरलता से आपके मन की बहुत सारी शक्तियां बचेंगी और यह बची हुई संकल्प शक्ति स्वतः ही आपके कार्यों को सफल करेंगी। यहां सरलता का अर्थ लापरवाही नहीं है। इस संसार में प्रायः कम लोग ही इस सिद्धांत को जानते हैं कि हमारे सभी कार्य पूर्णतः हमारी संकल्प शक्ति से प्रभावित होते हैं। संकल्प उल्टे तो कार्य असफल और संकल्प समर्थ तो कार्य सफल। सरलता के साथ ही आप अपने आत्मविश्वास, हिम्मत व साहस को भी अपना मित्र बनाएं। जिसे स्वयं में विश्वास है वह हिम्मत पूर्वक बड़े से बड़े कार्य भी सहज ही पूर्ण कर लेते हैं, परंतु जिन्हें स्वयं ही स्वयं की योग्यताओं पर व शक्तियों में विश्वास नहीं, वे परिश्रम करने पर भी सफलता के चरम बिंदु पर नहीं पहुंच पाते। यदि आप आस्तिक हैं, तो इस आत्मविश्वास के साथ प्रभु विश्वास भी जोड़ दें। यहां ईश्वर में विश्वास का अर्थ अंधविश्वास से नहीं, जबकि आप परमात्मा के बच्चे हैं, वह तुम्हारा परम पिता है, तो वह तुम्हें मदद अवश्य करेगा। परंतु जब आप उसके आज्ञाकारी बच्चे बने हो, आप अपने कुछ बोझ उस पर छोड़ दें, वो अवश्य ही आपके कार्य पूर्ण करेगा, वो अवश्य ही आपकी बिगड़ी को बनाएगा। उसको बोझ देकर कर आप हल्के हो जाएं। इससे यह लाभ भी होगा कि चिंता में नष्ट होने वाली शक्तियां बच जाएंगी और वही मन की शक्तियां आपके कार्यों को सफल करेंगी। आपको बार बार भिखारी की तरह भगवान से कोई मदद की भीख नहीं मांगनी है, परंतु उससे इतना समीप का नाता जोड़ना है कि वह आपको स्वयं ही मदद करे। जिम्मेवारियों में इस तनाव का एक मुख्य कारण मनुष्य का मैंपन भी है। मैंपन, मुझे करना है, मैं ही जिम्मेदार हूं, यह मेरी ड्यूटी है। यह संकल्प आपको परेशान न करे। आप पाएंगे कि आपकी नम्रता लोगों को आपका सहयोगी बनाएगी। आपका श्रेष्ठ व्यवहार वो श्रेष्ठ चरित्र दूसरों में आपके प्रति प्यार पैदा करेगा और इस प्यार व सम्मान में सभी आपके इशारों पर कार्य करने लगेंगे। फलत आपकी जिम्मेवारी आपके लिए आनंद का विषय बन जाएंगी। तो सबसे बड़े से बड़े जिम्मेदारी में भी सरल चित्त व्यवहार को न छोड़ें। अपनी जिम्मेदारी को चुस्ती व कर्तव्य परायणता के साथ निभाएं। सभी को सहयोग देकर अपने सहयोगी बनाते चलें, तो आप तनाव से मुक्त जीवन का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। अहंकार तनाव का कारण। अहंकारी व्यक्ति स्वयं भी परेशान रहता है वह दूसरों को भी परेशान करता है। अहंकार का भूत जिस मनुष्य पर सवार हो, तनाव उसके जीवन का अंग बन जाता है। अहंकारी मनुष्य सदा ही स्वयं को ठीक व दूसरों को गलत समझता है। वह दूसरों का सम्मान खो देता है, इसीलिए तनावग्रस्त रहने लगता है। एक मैनेजर को हमने देखा, उसकी परेशानी का कारण उसका अहम था। यद्यपि उसे अपनी बुद्धि व पढ़ाई का बहुत घमंड था, तो भी अपने अहम को पहचानने की बुद्धि उसके पास नहीं थी। उसके प्रत्येक बोल से अहंकार झलकता था। उसके उठने, बैठने, चलने, फिरने में अहंकार की दुर्गंध आती थी, परंतु उसे इसका आभास न था। वह किसी का भी अपमान करने में देरी नहीं करता था। परिणाम क्या हुआ? सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का मन खिन्न रहने लगा। वे सच्चे मन से काम नहीं करते थे। डांट व अपमान का डर उन पर सवार रहता था और सारे माहौल में तनाव के प्रकंपन अनुभव किए जा सकते थे। ऐसे वातावरण में कार्य सफल नहीं होते थे और मैनेजर साहब का तनाव और अधिक बढ़ जाता था। आखिर एक शुभ दिन आया जब एक ईश्वरीय सत्संग में उसे इनका बोध हुआ। अपनी गलतियों को स्वीकार किया और वह व्यक्ति बहुत नम्र हो गया, मिलनसार हो गया। कुछ ही दिनों में उसका वह सब तनाव लोप हो गया और उत्पादन बढ़ने लगा। अहंकार क्रोध व अशांति का जन्म दाता है। क्रोध से विवेक नष्ट होता है और मनुष्य पाप कर्मों की ओर प्रवृत्त होता है। अहंकारी व्यक्ति जिद्दी स्वभाव वाला होता है, वह दूसरों की राय को सम्मान नहीं देता, वह दूसरों की बात सुनना भी नहीं चाहता और यही स्वभाव तनाव की उत्पत्ति करता है। आप नम्र चित्त बने। अहंकार किस बात का करें? जिसका कि आप अहंकार करेंगे वह चीज आपके लिए दुखदाई होंगी। अहंकार मनुष्य को पतन की राह में ले जाते हैं। अहंकारी मनुष्य एक दिन इस संसार में अकेला ही रह जाता है। आप यह न भूल जाएं कि जो कुछ भी आपके पास है वह ईश्वरीय देन है। ईश्वरीय देन का अहंकार उस योग्यता को नष्ट करने का कारण बन सकता है। आपने अनेकों का अहंकार नष्ट होते देखा होगा। अहंकारवश कई मनुष्य अपने अधिकारियों का दुरुपयोग करते हैं। कुर्सी पर बैठकर वे अपने को सर्वे सर्वा समझते हैं, परंतु कुर्सी सदा ही किसी का साथ नहीं देती। आपने बड़े बड़े राजाओं को नष्ट होते देखा होगा या सुना होगा। कहावत है, आसमान का थूका मुंह पे आता है। सुख देना सीखो, तुम्हारा जीवन सुखों के खान बन जाएगा और तुम जीवन की संपूर्ण यात्रा तनाव मुक्त होकर कर तय कर सकोगे। अहंकार मनुष्य के चित्त को अस्थिर कर देता है। वह क्षणे क्षणे स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगता है। फलस्वरूप ठीक समय पर ठीक निर्णय नहीं होते और गलत कार्य होने पर भी सभी की भवें तन जाती है। इसीलिए चित्त को स्थिर करो। तुम्हारी नम्रता ही तुम्हारा कवच है। इस कवच में तनाव के तीर चुभ नहीं सकते। यह कवच अपने कर्म क्षेत्र पर साथ ले चलो, क्योंकि तुम्हारा कर्म क्षेत्र भी एक युद्ध क्षेत्र ही है। चाहे कई तुम्हें कितने भी कटु वचन रूपी तीर मारे, तुम इस कवच को कभी न उतारना। नम्रता तुम्हारे जीवन को दिव्यता की ओर ले चलेंगी। जो व्यक्ति नम्र स्वभाव वाला, जो सभी को अपना समझकर व्यवहार करता है, जो बड़े छोटे का भेद नहीं करता, सभी उसके मित्र बन जाते हैं, सभी उसके पूर्ण सहयोगी बन जाते हैं और उसके इशारों पर कुर्बान होने के लिए तैयार रहते हैं। इस प्रकार उसका मन सदा सदा के लिए प्रेम युक्त व तनाव मुक्त हो जाता है। जल्दी सोना, जल्दी उठना। कलयुग के इस तनाव युग में विनाश के साधनों ने जहां मनुष्यों को सुख देने की कोशिश की, वही मनुष्य ने अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा उन्हें पतन का व विनाश का कारण बना दिया। विज्ञान की देन टेलीविजन एक अद्भुत गिफ्ट है, परंतु उस पर आने वाली कई कार्यक्रम मनुष्य को दुष्चरित्रता की ओर ले जाते हैं। देर तक टीवी देखना, फिर देर से उठना व जल्दी जल्दी स्कूल जाना, मन में चिड़चिड़ेपन का संस्कार परिपक्व करने लगता है। इससे स्मरण शक्ति नष्ट होती है व कोर्स भी तनाव पैदा करने लगता है। देर से उठकर जल्दी जल्दी दफ्तर की ओर जाने वाले किस तरह के तनाव में रहते हैं, ये जहां तहां देखा जा सकता है। जिस मनुष्य ने कभी सूर्योदय ही नहीं देखा, जिसके शरीर पर कभी प्रभात की उष्ण काल की शीतल रश्मियां ही नहीं पड़ी, उसका मन खिन्नता का ग्रास अवश्य बनेगा। जब प्रातःकालीन प्रकृति हमारे तन मन व बुद्धि को शीतलता प्रदान करती हो, तब आलस्यवश करवटे बदलते रहना समस्याओं को निमंत्रण देना है। जो मनुष्य देर से उठते हैं उनकी बुद्धि धीरे धीरे मलिन होती जाती है। पिछले दिनों की समस्याएं व अप्रिय घटनाएं उनकी स्मृति पर दृढ़तापूर्वक छपी रहती है, जो कि उनके नए दिन पर बुरा प्रभाव डालती है। देर से उठते ही जल्दी जल्दी करने से मन की स्थिरता भंग होने से मनुष्य तनाव का शिकार हो जाता है। इतना ही नहीं, देर से उठने से अनेक शारीरिक व्याधियां भी मनुष्य को अपने चुंगल में लेने लगती है। यदि आप जीवन में संपूर्ण शांति व मन में संपूर्ण संतुलन चाहते हैं तो देर से सोने की आदत छोड़िए। मध्य रात्रि के आसपास का तमोगुणी वातावरण मनुष्य के विचारों पर व उसकी बुद्धि पर विपरीत प्रभाव डालता है, इसीलिए रात्रि का ये समय सोने के लिए निश्चित किया गया। अतः आप 10 बजे के आसपास सोने की योजना बनाएं और फिर जल्दी उठें। देर से सोने से नींद भी पूरी नहीं होती, सिर व दिमाग भी भारी रहते हैं और मनुष्य की सहज शक्ति जवाब देने लगती है। आपको ज्ञात रहे कि रात्रि 12 बजे से पूर्व की निंद्रा 12 बजे के बाद की निंद्रा की तुलना में डबल विश्राम देती है, परंतु यदि आप रात्रि 12 बजे या इसके बाद सोते हैं तो नींद की कमी आपको तनावग्रस्त अवश्य करेंगी। इसीलिए अपनी आदत में परिवर्तन करें। आप सवेरे शीघ्र ही उठिए, सूर्योदय से कम 1 घंटा पूर्व और उठकर प्रातःकालीन भ्रमण कीजिए, खुली हवा में अच्छे विचार कीजिए, एकांत में कुछ प्रभु चिंतन कीजिए, अपने संबंधों को मधुर बनाने पर विचार कीजिए तथा अपने स्वभाव को परिवर्तन करने की सोचिए। आपका मन खुशी व शांति से भर जाएगा और तनाव को प्रवेश करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। जल्दी सोना, जल्दी खाना व जल्दी उठना स्वास्थ्य, सुख व बुद्धि विकास का मुख्य साधन है। जल्दी खाने का तात्पर्य जल्दी जल्दी खाने से नहीं, परंतु सोने से 3 घंटे पूर्व खाने से है। रात्रि को सोने से पूर्व भी आप किसी सुखदायी साहित्य का, कुछ प्रेरक बातों का अध्ययन करें ताकि उठते ही आपके मन मंदिर में सुंदर विचार चलने लगे। तो बदल लें आप अपनी दिनचर्या को। यदि आपको देर तक काम करना पड़ता है तो उसका कुछ हिस्सा सवेरे पूर्ण करें। यदि आपकी रात्रि ड्यूटी है तो कोई बात नहीं, दिन में पर्याप्त विश्राम कर लें तो आपका जीवन ऐसा शांतमय व श्रेष्ठ बन जाएगा जो आपको देखकर दूसरे की भी तनाव मुक्त होने लगेंगे। क्या होगा और क्यों, अब क्या होगा, यह संकल्प अनेकों की मन की चिंता बनकर उसे खाली कर देता है और उसी खाली मन में बसेरा हो जाता है तनाव का। रोज ही प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसे वृत्तांत आते हैं जबकि वह चिंतित हो उठता है कि यदि ऐसा न हुआ तो क्या होगा, यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा। मनुष्य हर एक घटना के परिणाम स्वर्णिम परिणाम का आकांक्षी रहता है। प्रत्येक मनुष्य अपनी इज्जत की भी रक्षा चाहता है। हर प्राणी सफलता का आवाहन करता है तथा कौन होगा जो अपनी पूंजी की सुरक्षा में व उसमें वृद्धि न चाहता हो। यह चिंता कि कहीं परिणाम इच्छा के विरुद्ध न आ जाए मनुष्य को बहुत बेचैन कर देती है। चाहना तो सभी की है, परंतु क्या यह संभव है कि हमेशा परिणाम हमारी इच्छा के अनुकूल ही हो। चोर की इच्छा है कि मैं पकड़ा न जाऊं और मालिक की इच्छा है कि चोर पकड़ा जाए, तो किसकी इच्छा पूर्ण होगी। उसी की जिसके संकल्पों में बल होगा व जिसे वह समय जिसे साथ देगा। परंतु यदि वास्तव में ही आप इच्छा अनुकूल परिणाम चाहते हो तो सर्वप्रथम तो आप अपनी पुण्यों की पूंजी बढ़ाओ। पुण्य की पूंजी ही आपको साथ देंगी व परिणाम अच्छे होने में मदद करेंगी। दूसरी मुख्य बात उस श्रेष्ठ ज्ञान की है जिससे मनुष्य क्या होगा इस भय से मुक्त हो जाता है। आप ज्ञान प्राप्त करें कर्मों की गुह्य गति का, कर्मों की गति का गुह्य ज्ञान व इस विश्व ड्रामा की गति का गुह्य ज्ञान। आप तब कह सकेंगे कि यही होगा या जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। और यदि आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो परिणाम उनके हवाले कर दो। कर्म करने पर ही मनुष्य का अधिकार है, फल पर नहीं। इसीलिए फल के बारे में चिंता करना उचित नहीं। दूसरी सबसे ज्यादा मुख्य बात यह है कि भविष्य पूर्व निश्चित प्री डिसाइडेड है, उसको बदला नहीं जा सकता। इस पर विद्वानों में काफी चिंतन व वाद विवाद है और मतभेद भी। कोई इसे स्वीकार करते हैं, कोई नहीं, परंतु अनेक तथ्यों से इसके सत्य की पुष्टि होती है। तो भविष्य को निश्चित जानते हुए मनुष्य को निश्चिंत रहना चाहिए। चिंता करने के संस्कार तनाव का बड़ा कारण है। कई लोगों के मुख से आपने सुना होगा कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। यह विश्वास भी तनाव की औषधि है। ये मेरी बात क्यों नहीं मानते, इन्होंने यह काम क्यों नहीं किया, मेरे बिना पूछे वहां क्यों गए, ऐसी क्यों क्यों की क्यों क्यों माने लाइन मनुष्यों को तनाव का दुख प्रदान करती है। आप विचार करें इसके पीछे क्या छुपा है। मनुष्य का अहम, मनुष्य गलती करता है, मनुष्य संपूर्ण नहीं है, जो कि उससे भूल हो ही नहीं। दूसरों की गलतियों को इतनी गंभीरता से लेने से कोई लाभ नहीं कि वे हमारी गलतियां बन जाए। गलती दूसरे करें और तनाव की लपटों में लपटे हम, यह बुद्धिमानी नहीं। तो इस क्यों का विवेकपूर्ण निदान करें, कोशिश करें कि कोई भी बात मन को भारी न करे, कोई भी बात मन पर लंबे समय के लिए प्रभाव न छोड़ जाए। घटनाओं का प्रभाव स्थायी तनाव पैदा कर सकता है, इसीलिए अपने ज्ञान में वृद्धि करें और तनाव का प्रभाव दिनों दिन घटाना सीखें। सरल चित्त रहो, प्रसन्न चित्त रहो। प्रत्येक मनुष्य के सामने सारे दिन में अनेक बातें मन को भारी करने वाली आती है। अनेक बातें ऐसी भी आती है जिससे मन की गति बड़ी तीव्र हो जाती है और मनुष्य बेचैन, उदास या तनावग्रस्त हो जाता है। परंतु जिस मनुष्य ने अपने विचारों को सरल बनाया है, जिस व्यक्ति का स्वभाव सरल हो गया है, वह सहज भाव से उन सभी बातों को पार कर लेता है। बातें बड़ी हो या छोटी, समस्याएं चाहे कैसी भी हो, परंतु यह सत्य है कि मनुष्य सोच सोच कर उनका विकराल रूप बना लेता है। या यूं कहें कि कई मनुष्यों को आदत होती है राई को पहाड़ बनाने की, परंतु वो व्यक्ति जो पहाड़ सम समस्या को रुई सम बनाना जानता है, कभी पहाड़ को तोड़ने में समय नष्ट नहीं करता। वह तो हनुमान की तरह समस्याओं के पहाड़ को रुई की तरह उठा लेता है। अपने विचारों को वही व्यक्ति सरल बना सकता है जिसकी बुद्धि विशाल हो, अर्थात जिसने अपने विचारों को बहुत महान बना लिया हो। महान विचारों का निर्माण श्रेष्ठ संग से, श्रेष्ठ अध्ययन व एकांत चिंतन से ही संभव है। सरलता का अर्थ है किसी भी बात या घटना को गंभीरता से न लेना, क्योंकि प्रायः देखा गया है कि गंभीरता से लेकर मनुष्य बातों को बढ़ा देता है और फिर स्वयं ही उन्हीं के जाल में फंस जाता है। कई लोग पूछते हैं कि जो बातें है ही गंभीर उनके लिए क्या करें, जो बातें वास्तव में ही गंभीर है उन्हें आप सहज भाव से लेकर कर देखें और परिणाम नोट करें। अनुभव है कि यदि मन शांत व सरल चित्त है तो गंभीर समस्याएं हल्की अवश्य हो जाएंगी। सत्य घटना है। 5 वर्ष पूर्व अहमदाबाद के एक व्यक्ति को खून का कैंसर हो गया। डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि तुम्हारा जीवन केवल 20 दिनों की यात्रा में समाप्त हो जाएगा। वह व्यक्ति राजयोग का अभ्यास करता था, उसे जन्म व मृत्यु का स्पष्ट दार्शनिक ज्ञान था। उसने इस गंभीर समस्या को गंभीर रूप से नहीं लिया। पत्नी व 2 अविवाहित बच्चों के होने पर भी वह शांत बना रहा। उसने न अपने मन में तनाव को प्रवेश करने दिया, न परिवार को चिंतित होने दिया। मन को खुश रखकर मृत्यु का सहर्ष आह्वान किया। परिणाम अत्यंत सुखद रहा। उसका कैंसर गायब हो गया और वह व्यक्ति आज भी जीवित जीवन का व राजयोग का परम आनंद प्राप्त कर रहा है। डॉक्टरों को इसका रहस्य समझ में ही नहीं आया। हमने स्वयं भी अनुभव किया है। सरल चित्त रहने से अनेक शारीरिक बीमारियां सूली से काटे सम हो जाती है, और जो मनुष्य छोटी सी छोटी व्याधि से ही तनाव को निमंत्रित कर लेता है, उसकी बीमारियां उग्र रूप ले लेती है। तो चाहे आप कितने भी गंभीर रूप से बीमार हो, मन को भारी न होने दें। सदा सोचें कि बीमारी आई है तो जाएंगी भी अवश्य। आप इस सत्य सिद्धांत को स्वीकार कर लें। यदि आपके मन की स्थिति हल्की होगी तो सारी कारोबार भी हल्की हो जाएंगी, और यदि आप छोटी छोटी बातों में तनावग्रस्त हुए तो आपकी सारी कारोबार बिगड़ती रहेंगी। फलस्वरूप आपका तनाव रोज शिखर पर पहुंच जाया करेगा। इसीलिए अभ्यास डालो, छोटी छोटी बातों को, घटनाओं को व दूसरों की आलोचनाएं व टिकाओं को छोटा समझकर हल्का रहने का। छोटी छोटी बातों से तनावग्रस्त होकर जीवन के सुख को विषैला न करो। कई लोग दूसरों से आलोचना सुनकर बहुत भारी हो जाते हैं। यह बहुत बड़ी कमजोरी है। सोचना चाहिए, संसार में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसे आलोचना का सामना न करना पड़ता हो। प्रधानमंत्री को रोज न जाने क्या क्या सुनना पड़ता होगा। जो व्यक्ति जितना बड़ा कार्य करने चला हो उसे उतना ही सुनना पड़ता है। पड़ेगा, उससे गलतियां भी होंगी, उसे लोग बोलेंगे भी अवश्य, परंतु भारी होकर कार्य को छोड़ा नहीं जा सकता। हल्के रहो, प्रसन्न रहो और इन बातों को खेल समझकर प्रगति की ओर बढ़ते चलो। इसीलिए यदि आपके कोर्ट में केस चल रहे हो, यदि धंधे में कोई अपना ही व्यक्ति आपको धोखा दे रहा हो, यदि आपके बच्चे पढ़ाई में असफल हो गए हो, तो उनके भविष्य को सोचकर अपने मन में तनाव का घर हो सकता है। ऐसा घर न बनाएं। कोर्ट के केस जो कि मनुष्य को चक्रव्यूह में फंसा देते हैं बहुत बुरे हैं, परंतु जो भी होगा ठीक होगा, जो होगा उससे बाद में निपटेंगे। ऐसे विचारों से स्वयं को साहसी व सरल चित्त बनाओ। तनाव करने से तो केस सुधरने वाला नहीं है। जो व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है उससे प्रेम से बात करो, उससे ढंग से निपटो, परंतु मन को भारी न करो। यह याद रखो कि जो हमारे भाग्य में है उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। यहां हमारे कहने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप भाग्यवादी बनकर निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि भाग्य के अटल नियम को याद रखते हुए निश्चिंतता पूर्वक कर्म करें। बच्चों के भविष्य की चिंता यदि आपके तनाव का कारण है तो भी आप जरा सरल होकर कर देखो, विचार करो। यदि आपके 2 बच्चे योग्य नहीं है या ठीक से नहीं पढ़ते तो आपकी नींद हराम होने से क्या उनका भविष्य सुधर जाएगा, और क्या उनके भविष्य को सुधरने की संपूर्ण जिम्मेदारी केवल आपकी ही है। आप शायद कहेंगे कि हां, परंतु इसमें कुछ भूल है। हरेक मनुष्य आत्मा का इस विश्व ड्रामा में अपना अपना पार्ट है। आप बाप होने के नाते उन्हें पूर्ण सहयोग व मार्ग प्रदर्शना तो दे सकते हैं, परंतु उनके भाग्य को नहीं बदल सकते। इसी तरह घर में बच्चों द्वारा या अन्य किसी कारण से छोटे मोटे नुकसान होने पर तुरंत तनाव में न आए। गलती किसी से भी हो सकती है, गलती को भी सहज भाव से सुधारें। एक गलती होने पर आप क्रोध करने की या तनावग्रस्त होने की दूसरी गलती न करें। इस संसार में कुछ भी अविनाशी नहीं है, स्वयं ये विशाल संसार भी बनता व बिगड़ता है, वस्तुएं भी बनती बिगड़ती है। नुकसान हो गया, अब उसे ठीक करें। तनाव युक्त होने से तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इस प्रकार सरल चित्त मन द्वारा वह प्रसन्न मुद्रा घर के, दफ्तर के या अन्य कार्य स्थान के वातावरण को हल्का करते रहो तो आपका जीवन तनाव मुक्त रहेगा। वह आपके साथी आपके साथ का अनुभव ले सकेंगे। तनाव, व्यसन व व्यायाम। मन का तनाव शरीर पर कुप्रभाव डालता है। शरीर की प्रायः सभी नस नाड़ियां भी तनावग्रस्त हो जाती है। इससे शरीर ढलने लगता है, मस्तिष्क पर सिकुड़न आने लगती है। वो मस्तिष्क अपना कार्य स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकता। जब तनाव के कारण कई मनुष्य ज्यादा परेशान होते हैं तो कई नशीली वस्तुओं का सेवन करने लगते हैं, नींद न आने से नींद की गोलियां लेने लगते हैं और धीरे धीरे व्यसनों के इतने अधीन हो जाते हैं कि उन्हें ही अपना जीवन मान लेते हैं। व्यसनी युक्त जीवन के दुष्कर परिणाम हमने देखे हैं। आयु बढ़ने के साथ साथ नशीली वस्तुओं का सेवन करने वाले के मस्तिष्क की शक्ति क्षीण होने लगती है और जब उन्हें दिनों दिन अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो उनका तनाव सीमा लांघ जाता है, फलत वे मृत्यु का आह्वान करने लगते हैं। विदेशों में आज कितने ही लोग इसी कारण जीवघात करते हैं। तो व्यसन तनाव मुक्ति का साधन नहीं है, बल्कि जीवन से ही मुक्त करने के आधार है। मनुष्य सोचता है कि नशीली वस्तुएं कितनी सुखकारी है, परंतु यह सुख शीघ्र ही उनका साथ छोड़ देता है और मनुष्य दुख की आंधी में गिर जाता है। हमने कितने ही विदेशी युवकों को देखा जो कुसंगवश व्यसनों के शिकार होकर कर जीवन की सुख शांति गंवा चुके हैं। यदि आप तनाव से मुक्त होना चाहते हैं तो व्यसनों से नहीं बल्कि स्वयं को शक्तिशाली बनाओ, अपने मन की शक्ति को बढ़ाओ और विचारों को खुला करो। अपनी दिनचर्या को ठीक करना भी आवश्यक है। जैसे हमने कहा है कि देर से उठना भी तनाव को आवाहन करना है, परंतु समय से पूर्व अपने कार्य सरलतापूर्वक सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने से समय की कमी महसूसता से उत्पन्न तनाव समाप्त हो जाएगा। कई लोग वैसे तो अपना समय नष्ट करते रहते हैं और काम के समय जल्दबाजी करके अपने व दूसरों के मन में तनाव पैदा कर देते हैं। इसीलिए काम को धैर्यता पूर्वक व शांत मन से करने का अभ्यास डालें। सवेरे उठकर आप प्रकृति के द्वारा प्रदान किए हुए शीतल वातावरण का सुख लेकर तो देखो। जब प्रकृति आनंद बिखेर रही हो तब आप सो रहे हो तो क्या होगा। सुबह की शीतल पावन में सैर का आनंद लीजिए। आपके मन में नवीन विचारों का संचार होगा, दिमाग की सलवटें खुलेंगी, आप तन मन की ताजगी महसूस करेंगे। प्रातः काल खाली पेट कुछ आसन व्यायाम करने से शरीर में रोगों की आशंका कम हो जाती है, जमा रक्त बहने लगता है, नसों की सिकुड़न खुल जाती है। फलस्वरूप रक्त का नियमित या समुचित प्रवाह होने से तनाव नष्ट हो जाता है। परंतु यदि आप सुस्त महादेव हैं, देर से उठने के कारण आपको समय ही नहीं मिलता, तो तनाव आपको शिकार अवश्य बनाएगा। इसीलिए रोज व्यायाम करना व पर्याप्त नींद लेना तनाव मुक्ति के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही संयमित जीवन व संयमित भोजन भी हमें इस प्रकार के मूल को काटने में मदद करता है, रोगों के मूल को काटने में मदद करता है। भोजन का भारीपन बुद्धि को भारी करता है। यदि आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो संयमित भोजन करें। ऐसा भोजन जो पचने में समय ले या जो पचे ही नहीं, तनाव को बढ़ावा देगा, क्योंकि मस्तिष्क की बहुत सी सारी शक्ति उस तरफ लगने लगेंगी। फलस्वरूप तनाव से लड़ने की शक्ति उनमें नहीं रहेंगी। आप अपने कार्य व्यवहार को इस तरह आयोजित करें कि आपके पास स्वयं को देखने के लिए, अच्छे चिंतन के लिए व कुछ समस्याओं पर शांत मन से सोचने के लिए समय हो। सारे दिन की भाग दौड़ आपके मन को थकाएंगी व तनाव पैदा करेंगी। इस संसार में उन बातों की तो कोई कमी ही नहीं जो तनाव की अग्नि प्रज्वलित करती है, परंतु हमें इस अग्नि को बुझाने के लिए स्वयं के चित्त को शीतल करना पड़ेगा। राजयोग से तनाव मुक्त, तनाव की अग्नि से अपने तन मन की शक्तियां भस्मीभूत न करो। जीवन तो पहले ही छोटा है, कलयुग के इस घोर अंधकार में समस्याएं व परिस्थितियां न हो, यहां धोखा और अविश्वास न हो, यहां कुसंग व चरित्रहीनता न हो, यह असंभव है। यदि यहां श्रेष्ठता होती, यदि यहां मानवता होती, यदि यहां धर्म होता, तो इसे कलयुग की संज्ञा ही क्यों दी जाती। परिस्थितियों को स्वीकार करने के बजाय हमारे पास अन्य कोई चारा नहीं। हाँ, यदि आप इन समस्याओं के कटिले मार्ग को साफ करना चाहते हैं तो अपनी स्व स्थिति को अर्थात मन स्थिति को श्रेष्ठ बनाएं। मन में कांटे नहीं हो तो मार्ग में भी कांटे नहीं रहेंगे। मन की विकृतियां, मन की समस्याएं ही जीवन में समस्याओं का निर्माण कर रही है। मन की श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त होती है राजयोग से। राजयोग क्या है, इससे प्रायः हमारा जन समुदाय अनभिज्ञ है। राजयोग आत्मा व परमात्मा का मिलन है। राजयोग का अर्थ है अपनी मन व बुद्धि का संबंध परमपिता परमात्मा से जोड़ना। सर्वशक्तिवान से मन व बुद्धि जुड़ जाने से इनकी पवित्रता व शक्तियां बढ़ने लगती है। मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण रख सकता है, विभिन्न परिस्थितियों में बुद्धि में संतुलन रख सकता है। फलस्वरूप उसका जीवन शांत, सरल, सुखी, खुश, आनंदित व तनाव मुक्त होने लगता है। राजयोग से विचार शुद्ध होते हैं, विचारों को यथार्थ दिशा मिलती है, दूसरों के प्रति हमारे दृष्टिकोण बदलकर श्रेष्ठ हो जाते हैं। हमारी दृष्टि बदलने से संबंधों में मधुरता आ जाती है, संकल्पों में बल आने से एक राजयोगी छोटी मोटी बातों में तनावग्रस्त नहीं होता। कितने ही मनुष्य राजयोग द्वारा व्यसनों से मुक्त हुए हैं। लाखों मनुष्यों को जीवन का सच्चा व संपूर्ण सुख मिला। लाखों मनुष्य ने तनाव मुक्त जीवन जीना सीखा। राजयोग का मार्ग केवल मुक्ति का मार्ग नहीं, यह तो जीवन जीने की कला सिखाता है, जीवन से क्रोध व भय का निवारण करता है और मनुष्य इसी जीवन में जीवन मुक्त हो जाता है। उसे जीवन का मूल्य व लक्ष्य भी समझ में आ जाता है और वह जीवन जीना भी सीख लेता है। कार्य चाहे कितनी ही जल्दबाजी का हो, परिस्थितियां चाहे कितनी ही विकराल हो, राजयोगी के मन की गति तीव्र नहीं हो पाती। वह सोचता है, परंतु धैर्यता और सरलता पूर्वक। वह बोलता अवश्य है, परंतु तनाव पैदा करने वाले बोल नहीं, बल्कि तनाव हरने वाले सुखदायी बोल। वह कर्म भी अवश्य करता है, जिम्मेदारियों का भी वाहन करता है, परंतु विचलित नहीं होता। वह दूसरों का दमन नहीं करता, वह स्नेह बरसाता है, इसीलिए स्नेह पाता है, सहयोग पाता है, और इस कारण तनाव रहित हो जाता है। याद रहे, जो दूसरों के मन में तनाव पैदा करते हैं, चाहे बोल से या व्यवहार से, वे कभी भी तनाव मुक्त नहीं हो सकते। तो आओ, राज्यों की संपेक्ष विधि आपके लाभार्थ प्रस्तुत करें। यह राज्योग प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है। आज कई लाख लोग अपना पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हुए इस सहज योग का अभ्यास कर रहे हैं। इसमें कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं, बल्कि क्षण क्षण आत्मा के शुद्धिकरण से अपनी अनेक बुराइयां स्वतः ही छूट जाती है। आप आराम से सरलता पूर्वक किसी भी आसन पर बैठिए। आप कुर्सी पर भी बैठ सकती हैं, जमीन पर भी। हाँ, यह आवश्यक है कि आपका आहार विहार शुद्ध हो। शुद्ध अन्न से मन शुद्ध होगा और स्थिर मन ही राजयोग के अभ्यास को सफल कर। आप अपने मन से चिंतन करें कि इस देह के अंदर ब्रुकिटी के मध्य विराजमान मैं एक चैतन्य आत्मा हूं। मैं देह नहीं हूं, मैं इस देह का मालिक हूं। मैं ज्योति स्वरूप हूं। मेरा स्वधर्म शांति है। इस प्रकार चिंतन करते हुए अपनी बुद्धि को अपने ज्योति स्वरूप पर स्थित करें। कुछ क्षणों के लिए अपने विचार प्रवाह को बंद रखते हुए अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। पुनः चिंतन को प्रवाह दें। मैं एक आत्मा हूं, ज्योति पुंज हूं। मैं शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। और फिर से अपनी बुद्धि को ब्रुकुटी के मध्य स्थित आत्मिक स्वरूप पर कुछ क्षणों के लिए स्थिर कर दें। पुनः चिंतन प्रारंभ करें। मैं आत्मा इस देह में परम धाम माने आत्माओं के लोक से आई हूं। मेरा स्वधर्म शांति है। मेरा स्वधाम शांति धाम है। मैं इस देह में एक्टर हूं। मैंने ऐसे अनेक देह धारण किए हैं। मैं ज्योति पुंज हूं और इस तरह पुनः अपनी बुद्धि को अपने स्वरूप पर स्थित करें। इस प्रकार धीरे धीरे स्वयं को आत्मिक स्वरूप में स्थित करते हुए अपने मन को परमात्मा चिंतन में स्थिर करें। परमात्मा क्या है? संक्षेप में, आत्मा की ही तरह वह भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। प्रकाश पुंज है, हम सभी आत्माओं का परम पिता है, परम धाम के वासी हैं, गुणों के सागर हैं, सर्वशक्तिवान है। मन को परमात्मा चिंतन में लगाएं, वह निराकार शिव परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, सुख के सागर हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता हैं, और तत्पश्चात अपनी बुद्धि को परम धाम में उनके दिव्य स्वरूप पर स्थिर कर दें। पुनः परमात्मा चिंतन प्रारंभ करें। वे मेरे परम पिता हैं, पवित्रता के सागर हैं, शक्ति दाता हैं, वर दाता हैं, दुख हरता सुख करता है। वे ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता है, सर्व के पालनहार है, पतित पावन कल्याणकारी है। इस प्रकार उनके गुणों का चिंतन करते हुए परम धाम में उनके स्वरूप पर बुद्धि स्थिर करें। वो महसूस करें कि उनसे सर्व गुणों व शक्तियों की किरणें मुझ पर आ रही है, तथा मन बुद्धि को एकाग्र रखते हुए परम आनंद का अनुभव करें। संक्षेप में यही राजयोग की विधि है। इससे धीरे धीरे आत्मा का संबंध परमात्मा से हो जाता है और परमात्मा के गुण पवित्रता व सर्व शक्तियां हम आत्माओं में आने लगती हैं। इस राजयोग का अभ्यास सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। शाम को जब सूर्यास्त होता है, प्रकृति की उस शांत वेला में करना चाहिए। इस तरह दिनों दिन अभ्यास करने से मन शांत व निर्विकारी होने लगेगा, आत्मा की शक्तियां बढ़ने लगेंगी, मन में संतुलन व बुद्धि में स्थिरता आएंगी, विचार शुद्ध होने लगेंगे और व्यवहार क्रोध व अहंकार रहित हो जाएगा, जिससे हम तनाव मुक्त होकर शांति व सुखी जीवन का रसपान कर सकेंगे। ओम शांति।